नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 18 में, द कर्स्ड अर्जुना। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत असल में श्रापों और वरदानों की कहानी है, जहाँ पे किसी को कई श्राप मिले, किसी को कई वरदान मिले, और शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसको वरदान या श्राप नहीं मिला हो। तो हमारा आज का टॉपिक भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हमारे किरदार अर्जुन हैं, जिनको सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया था। तो आज हम सुनेंगे कि ये जितने भी श्राप हैं वो उनसे अर्जुन कैसे अफेक्टेड हुए थे, या अर्जुन को कौन से श्राप मिले थे। तो अर्जुन के बारे में तो ज़्यादातर सभी लोग जानते ही हैं, मैं फिर भी एक मोटा मोटी एक स्केच आपको बता देता हूँ कि पांडवों में वो तीसरे भाई थे, उनकी माँ कुंती थी, और उनके जो देव पिता थे वो थे इंद्रदेव। और अर्जुन का जो फेवरेट वेपन जो था वो था धनुष। तो ये एक रफली एक अर्जुन के बारे में मैंने बताया आपको। आइए अब चलते हैं उस श्राप के बारे में जिसमें अर्जुन को ये श्राप मिलता है कि उन्हें एक साल नारी के रूप में रहना होगा। तो इस श्राप की कहानी की शुरुआत होती है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं। मतलब ये वही जुए का गेम होता है जिसमें कि द्रौपदी को बेइज्जत भी किया जाता है। तो खैर, वो इंसिडेंट होने के बाद सब जुए में हार गए, तो इन लोगों को, पांडवों को, 13 साल का वनवास दे दिया जाता है। अब इस 13 साल के वनवास में 12 साल आपको जंगल में रहने हैं और 1 साल आपको अज्ञातवास में रहना है। अज्ञातवास में रहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है, और अगर किसी ने भी आपको पहचान लिया कि आप पांडव हो तो आपको फिर से 13 साल तक वनवास में आपको जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन था। तो अब सब लुटपुटा के जितना था, सब जमीन ज़्यादा जितना था, सब राज्य अपना लुटा के सब ये जंगल में पहुँचते हैं। अब जंगल में आने के बाद पांडवों के मन में गुस्सा तो था ही, द्रौपदी को अंदर से गुस्सा भी था, उनको अफसोस भी हो रहा था। थोड़ी देर के लिए तो उनको लगता है कि अगर वो कर्ण से उनकी शादी हुई होती तो शायद ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसा टाइम आने ही नहीं देता कि कोई उसकी बेइज्जती करे। और यहाँ 5 पति के होने के बावजूद भी कोई भी इसकी इज्जत को बचा नहीं सका, क्योंकि एक तो जुए में बीवी को लगाना ही सबसे बड़ी बेइज्जती थी, दूसरी बेइज्जती तब थी कि जिस तरीके से सभा में खींच के लाया गया। अब जहाँ द्रौपदी के मन में ये सारी बातें चल रही थी, दूसरी ओर भीम भी अंदर ही अंदर कुट रहा था। एक तो गुस्सा था कि वो कुछ कर नहीं पाया उस जगह पे, और युधिष्ठिर पे भी गुस्सा आ रहा था कि सब कुछ लगा दिया इसमें, दाव में लगा दिया, बीवी, जमीन, जायदाद। अब युधिष्ठिर भी अंदर ही अंदर बहुत उनको गिल्ट फील हो रहा था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि सब ही अंदर में एकदम कुड़ रहे थे। लेकिन इसमें अर्जुन जो था, अर्जुन को लगता है कि अभी कुड़ने से या गुस्सा मन में रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे अच्छा है कि ये जो समय है इसको ट्रेनिंग में यूज़ करना चाहिए और अपना जो भी स्किल है, जो भी आता है, उस चीज़ को और अच्छे से निखारा जाए। तो वो क्या करते हैं कि ये सब सोच के अपने भाइयों से अलग हो जाते हैं अपना स्किल्स को सुधारने के लिए। वैसे भी अर्जुन जो थे वो बहुत फोकस टाइप के इंसान थे, और जितना इंसिडेंट अभी हुआ इसके बाद उनको लग गया था कि भाई लड़ाई तो होनी पक्की है, तो जब भी लड़ाई हो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। तो वो खुद को और सब तरीके से प्रिपेयर करना चाह रहे थे, और इसलिए भी वो अपने भाई लोगों से अलग हो जाते हैं। तो यही प्रिपरेशन के दौरान वो अपने पिता से मिलने जाते हैं, अपने जो देव पिता हैं, मतलब इंद्रदेव। तो वो इंद्रलोक पहुंचते हैं, और इंद्रलोक को अमरावती भी कहते हैं। इंद्रलोक ऐसा जगह है जहाँ पे कि न तो बुढ़ापा है, ना ही रोग पीड़ा है, अप्सराएं हैं। तो उन्हीं अप्सराओं में एक थी उर्वशी। तो एक दिन जब अर्जुन वहाँ रुके हुए थे, उर्वशी एक दिन सभा में डांस कर रही होती हैं, और अर्जुन उनको नॉनस्टॉप उनको देख रहे थे। अब उर्वशी इस बात को नोटिस कर लेती है कि अर्जुन उनको लगातार देख रहे हैं। अब अर्जुन भी अच्छे पर्सनालिटी वाले इंसान थे, मतलब इंद्रदेव के बेटे थे ऊपर से, तो उनका भी रुतबा एकदम ऐसा देवों टाइप का था। तो उर्वशी के भी मन में थोड़ा बहुत फीलिंग्स आने लग जाता है अर्जुन के लिए। तो यूं ही कुछ दिन पार होता है, तो जब भी उर्वशी अर्जुन को देखती थी, वो देखती थी कि वो उनको निहार रहा है। तो एक दिन उर्वशी क्या करती है, अर्जुन के पास पहुंचती है और बोलती है कि मुझे तुम पसंद हो और तुम मुझे अपना बना सकते हो। अब ये सुन के अर्जुन थोड़ा सा ऐसा सकपका जाते हैं, तो वो पहले तो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आपने शायद गलत समझा है, मैं आपको अपनी माँ के नज़र से देखता हूँ। अब ये सुन के उर्वशी को थोड़ा सदमा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। वो सोचती है कि एक नॉर्मल इंसान हो के तुम एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि उर्वशी गुस्सा हो जाती है इस बात से कि तुम पृथ्वी के इंसान हो और स्वर्ग की अप्सरा के ऑफर को ठुकरा दिया, जबकि अप्सराओं को उस वक्त बड़े बड़े तपस्वियों के पास भेजा जाता था जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, मतलब इतनी खूबसूरत होती थी वो। तो इससे वो नाराज होकर अर्जुन को श्राप दे देती है कि तुम जिंदगी भर मर्द होते हुए भी नारी के रूप में घूमोगे। अब इधर अर्जुन वो उर्वशी को माँ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि अर्जुन को पता है कि उर्वशी की शादी एक टाइम पे इनके पूर्वजों से हुई थी, मतलब इनके पूर्वज थे पूर्वावश करके एक राजा थे जिनसे उर्वशी की शादी हुई थी। अब उर्वशी तो अप्सरा है, उन पे एज वेज का कुछ चक्कर है नहीं, वो वैसी की वैसी रही। वो पूर्वावश के बाद के जो वंशज हैं वो हैं अर्जुन। अब अर्जुन इस बात को जानते थे इसीलिए वो उर्वशी को एज ए माँ कह के बुलाते हैं। तो खैर ये श्राप की कहानी इंद्रदेव तक भी पहुँचती है। अब इंद्रदेव आते हैं और वो फिर उर्वशी को समझाते हैं और फिर उनके समझाने के बाद उर्वशी क्या करती है कि जो उनका लाइफ टाइम का जो पनिशमेंट जो श्राप था वो सिर्फ एक साल के लिए कर देती है। और बाद में यही श्राप अर्जुन के काम में भी आता है क्योंकि इन लोगों का जो 13 साल का वनवास था उसमें लास्ट का जो एक साल था उसमें इन लोगों को अज्ञातवास में रहना था, मतलब अपना भेष या फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी थी। तो उस एक साल में अर्जुन नारी रूप में रहते हैं, नारी रूप में एक विराट करके राजा हैं उनके महल में वो डांस और म्यूजिक सिखाते हैं। तो ये तो कहानी थी पहले श्राप की जो अर्जुन को मिला था और इसका उन्हें फायदा भी हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ अर्जुन के दूसरे श्राप के बारे में। अर्जुन को दूसरा श्राप मिलता है महाभारत की लड़ाई में, मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, और वो भी तब जब वो भीष्म पितामह को वो तीर से मारते हैं। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई जब हो रही थी तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स थे लड़ाई के, जैसे कि अगर कोई दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप किसी जानवर पे अटैक नहीं कर सकते हो या किसी नारी को आप लड़ाई में नहीं ला सकते हो। लेकिन अर्जुन वो क्या करते हैं, वो शिखंडी को ले आते हैं और शिखंडी को अपना गार्ड बना के वो भीष्म पितामह पे वो तीर चलाते हैं। अब शिखंडी असल में द्रौपदी के भाई हैं लेकिन जिनका जन्म एज ए लड़की हुआ था और भीष्म पितामह को ये बात पता था। तो जैसे ही वो शिखंडी को सामने देखते हैं वो अपना हथियार रख देते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के अर्जुन फिर उस पर तीर चला देते हैं। वैसे शिखंडी के पिछले जन्म और भीष्म पितामह से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ पे शिखंडी का जन्म ही भीष्म पितामह को मारने के लिए हुआ था। तो इससे जो कहानी है आप वो मेरे एपिसोड 4 में भीष्म 2 अंबा के नाम से है, वो उस वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं। तो खैर, तो जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बताऊँ कि भीष्म पितामह असल में 8 वसुदेवों में से एक देव है। वसुदेव जैसे जो हमारे प्राकृतिक देव हैं उन्हें हम वसुदेव कहते हैं, जैसे चंद्रदेव हो गए या आकाश देव हो गए या नक्षत्र देव है, तो इन 8 वसुदेवों में भीष्म पितामह भी एक वसुदेव हैं। तो बाकी वसुदेव देखते हैं कि किस तरीके से अर्जुन ने धोखे से भीष्म पितामह को मारा है। अब वो इस बात से बहुत गुस्सा होते आते हैं और फिर अर्जुन को वो श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारी मौत भी तुम्हारे अपने बेटे के हाथों ही होगी। और ये श्राप अपना असर दिखाता है लड़ाई के खत्म होने के बहुत टाइम के बाद। तो इससे पहले कि उस श्राप के बारे में और आगे कुछ बताऊं, मैं ये पॉइंट बताना ज़रूरी है कि अर्जुन की द्रौपदी के अलावा 3 बीवियां और थीं। एक थी नागकन्या जिनका नाम था उलूपी, एक थी मणिपुर से वहाँ की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था चित्रांगदा, और तीसरी थी सुभद्रा जो कृष्ण की बहन थी। तो अब आते हैं श्राप में। तो अब सीन ऐसा है कि महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी है, पांडव जीत चुके हैं, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं और सब धीरे धीरे सब कुछ अपना अपना सब सेटल डाउन हो गया है। तो जब लड़ाई खत्म हो गई, ये राजा बन गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, तब वो एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं ताकि अपना वर्चस्व को और फैलाया जाए। अब अश्वमेघ यज्ञ का फंडा ये होता है कि उसमें एक ऐसे घोड़े को चुना जाता है जिसकी बाद में बलि होगी, और उस घोड़े के साथ में जो राजा यज्ञ कर रहे हैं उनकी सेना रहती है, और वो एक साल के लिए उस घोड़े को छोड़ देते हैं। अब वो घोड़ा जिस जिस राज्य से होते हुए पार होगा वहाँ वो उस राजा के अंडर में आ जाएगा। अगर वो घोड़ा आपके राज्य में आया है और अगर आपने उस घोड़े को रोक लिया है, इसका मतलब है कि आप उस राजा की सेना को आप चैलेंज कर रहे हो। और सेना के कमांडर थे अर्जुन, तो ऑब्वियसली था कि कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो धीरे धीरे सब मतलब ऑटोमेटिकली सरेंडर कर रहे थे जहाँ जहाँ से ये घोड़ा पार हो रहा था। तो इसी दौरान ये अश्वमेघ का जो घोड़ा है ये पहुँचता है मणिपुर। अब मणिपुर में अभी जो राजा हैं वो है अर्जुन के बेटे, क्योंकि उनकी जो बीवी है मणिपुर से वो वहीं रह गई थी अपने बच्चे को लेके। तो चित्रांगदा के जो बेटे हैं, जो अर्जुन के बेटे हैं, वो उनको पता चलता है कि अर्जुन आए हैं एज ए कमांडर वो अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के साथ, तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं और इसी मकसद से वो घोड़े को रोकते हैं। अब अर्जुन उनसे कहते हैं कि तुमने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोक लिया है, इसका मतलब तुम चैलेंज कर रहे हो, और अभी मैं तुम्हारा पिता के रूप में नहीं आया हूँ, मैं युधिष्ठिर जो हैं, जो राजा हैं, उनका कमांडर बनके मैं यहाँ पे हूँ, तो तुमने घोड़ा को रोका है इसीलिए धर्म के अनुसार तुम्हें मेरे से फाइट करना पड़ेगा। अब जो उनका बेटा है वो ना चाहते हुए भी बोलता है कि ठीक है, तो फिर दोनों में बाप बेटे में फाइट होनी शुरू हो जाती है, और फिर कि उनका जो बेटा है वो तीर चलाता है और वो अर्जुन को लग जाता है और अर्जुन फिर मर जाते हैं। अब अर्जुन के मरने के बाद उनके बेटे को बड़ा बुरा लगता है, उनके बेटे का नाम होता है बब्रुवाहन। अब बब्रुवाहन को लगता है कि उसने अपने पिता को मार दिया इसीलिए उसे अब जीने का कोई हक नहीं है, तो वो आत्महत्या करने के लिए जाता है। लेकिन उसी टाइम पे जो नागकन्या है, जो दूसरी बीवी है अर्जुन की उलूपी, वो वहाँ पहुँच जाती है और वो फिर नागमणि के हेल्प से अर्जुन को वापस जिंदा कर देती है, और फिर वो समझाती है उनके जो बेटे होते हैं बब्रुवाहन को कि अर्जुन की जो मौत हुई थी वो एक श्राप के कारण हुआ था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो ये था दूसरा श्राप जो अर्जुन को मिला था। तो दोस्तों ये तो बातें थी अर्जुन के श्राप से रिलेटेड, बट कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अर्जुन के बारे में। जैसे कि उन्हें सब्यसाची भी कहा गया है। सब्यसाची का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से तीर चला सके। इसके अलावा उनको गुड़ाकेश भी कहते थे। गुड़ाकेश का मतलब ऐसा होता है कि जो इंसान नींद पे काबू कर लिया हो। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि जब गुरुकुल में सारे पांडव लोग ट्रेनिंग ले रहे थे द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, तो रात में एक बार सब खाने के लिए बैठते हैं और उसी टाइम पे दिया बुझ जाता है। लेकिन अर्जुन नोटिस करते हैं कि अंधेरा होने के बावजूद भीम बड़े आराम से खा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि आप अंधेरे में कैसे खा रहे हो। तो भीम कहते हैं कि इसमें ऐसे आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है, मेरे हाथ को पता है कि खाना और मेरा मुंह कहाँ है, तो वो ऑटोमेटिकली खाने को मेरे मुंह तक डायरेक्टली पहुंचा रहा है। अब ये बात अर्जुन के मन में लग जाती है कि ये अंधेरे में हाथ को बिना गाइडेंस के वो खाना प्लेट से उठा के डायरेक्टली मुंह तक पहुंचा रहा है, तो ये काम मैं तीर के साथ भी कर सकता हूँ कि जहाँ मुझे बिना गाइडेंस के मैं प्रैक्टिस से अपने तीर को टारगेट तक पहुंचा सकूँ बिना देखे। अब धीरे धीरे वो इस बात को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो रात में जग जग के इस बात की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं, और इसी प्रोसेस में कहते हैं कि वो नींद पे भी अपना काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्किंग थे कि जब तक इसमें परफेक्ट नहीं हो जाएं तब तक वो माने नहीं, और शायद इसी प्रोसेस में उन्होंने नींद पे भी काबू पा लिया होगा। तो ये तो एक था उनके बारे में कि वो कितने हार्ड वर्किंग थे। दूसरा ऐसा कहते हैं कि जब कौरव और पांडव सब एक साथ ही ट्रेनिंग लेते थे वहाँ पे, जितने भी राजकुमार लोग रहते थे, तो वो लोग द्रोणाचार्य पे हमेशा ब्लेम करते थे कि आप अर्जुन की तरफ बहुत बायस्ड हो। तो गुरु द्रोणाचार्य इनडायरेक्टली बाकी जितने भी उनके शिष्य थे, जैसे कौरव लोग हो गए या पांडव लोग जितने भी हो गए अर्जुन के अलावा, इन सबको इनडायरेक्टली एक मैसेज देना चाह रहे थे कि क्यों अर्जुन की तरफ उनका बायसनेस है। तो इसके लिए वो एक बार अर्जुन को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देते हैं कि तुम लोग जाओ, तुम जाओ और सामान लेके आ जाओ। और इसी बीच वो जितने उनके शिष्य हैं, जैसे कौरव और पांडव जो बाकी जो बच गए, उन लोगों को वो एक सिंगल पत्ते पे निशाना लगाने का वो कुछ मंत्र या फिर कुछ बताते हैं कि इस तरीके से मारो तो वो सिंगल लीफ पे ऐसा टूटेगा। अब सब वहाँ पे प्रैक्टिस करके वो तीर मारते हैं और वो पत्ता उत्ता सब गिर जाता है और सब चले जाते हैं वो तीर वीर मार के। तो कुछ देर के बाद वो सामान उमान लेकर अर्जुन पहुंचता है। अभी अर्जुन देखता है वहां पे कि इतना सारा पत्ता गिरा हुआ, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ लेसन जरूर मिस हो गया है जो ये अटेंड नहीं कर पाया। तो इस चीज को कवर करने के लिए वो जो रेगुलर टाइम होता था इन लोगों का, जितना भी लर्निंग सेशंस होते थे या फिर जितना भी सीखने का टाइम होता था, इसके अलावा ये उस चीज़ को प्रैक्टिस करता था जो उस दिन छूट गया था जब ये सामान लाने के लिए गया था। तो ये चीज़ें जब बाकी पांडव और कौरव देखते हैं कि अर्जुन उस जगह नहीं होते हुए भी उस लेसन को इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बाद में कर पा रहा है, तब उनको समझ में आता है कि क्यों इतना बायसनेस गुरु द्रोणाचार्य का अर्जुन की तरफ है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी अर्जुन से रिलेटेड, जिससे अगर कुछ नहीं तो हमें एटलीस्ट इतना सीखने को जरूर मिलता है कि हार्ड वर्क आपके कंट्रोल में है, अगर कुछ नहीं तो हार्ड वर्क करते रहें और ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। और कहते भी हैं कि अर्जुन को एज ए रोल मॉडल स्टूडेंट के रूप में देखा भी गया है हमेशा से। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद करते रहें और इंसानियत को जगाए रखें। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियां पहुंचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुंचाए हुए। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर भेजें। और कुछ सुनाओ यार अब बाकी चैनल्स के अलावा कुकू एफएम पे भी अवेलेबल है, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज और अपने सुझाव भेज सकते हैं। तो प्लीज आप लोग मुझे अपना फीडबैक भेजें। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।